ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज ने बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सुश्री वाज ने बताया कि मतों की गणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनाव दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है। ईवीएम को सतत निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना पर्यवेक्षकों, सहायकों, माइक्रो पर्यवेक्षकों, सांख्यिकी कर्मचारियों और अन्य सहायक कर्मियों सहित लगभग 5000 स्टाफ सदस्यों को मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही मतगणना केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 38 कंपनियों को तैनात किया गया है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन के को कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को पेरिस पहुंचेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा एलिजे पैलेस में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार और बृहस्पतिवार को अमरीका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अमरीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मनोरंजन, रचनात्मकता और संस्कृति की दुनिया को एक साथ लाने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन वेव्स के सलाहकार बोर्ड की बैठक की। उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर सहित देश और दुनिया के शीर्ष पेशेवरों के साथ बातचीत की। उन्होंने संगीत निर्देशक एआर रहमान, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और अन्य शख्सियतों से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कल बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब किया है। उनसे कहा गया है कि यह खेदजनक है कि बांग्लादेश के अधिकारी नियमित रूप से बयान देकर भारत को नकारात्मक रूप से चित्रित करते रहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है। मुंबई में 4 महिलाओं सहित 7 बांग्लादेशी नागरिकों को वैध दस्तावेजों के बिना देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे लगभग 5 साल से चेंबूर के माहौल में रह रहे थे। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे बांग्लादेश से हैं और बिना कानूनी दस्तावेजों के रह रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में नवी मुंबई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लगभग 200 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए हैं। एनसीबी के एक अधिकारी के अनुसार विदेश में स्थित लोगों का एक समूह इस गिरोह को चला रहा था। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा स्थित भारतीय विरासत संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू होकर इस महीने की 10 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल में कल शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुंबई सिटी एफसी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।